समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की हलचल होगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं शेफाली सिंह। नमस्कार शेफाली।
नमस्कार अलका, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, टू ब्राइटन अप योर सैटरडे मॉर्निंग, वी हैव अ फेमस कोट बाय द एल्केमिस्ट ऑथर पाउलो कोएलो, हु ऑल्सो हैपन्स टू हैव हिज बर्थडे टुडे। ही रोट, व्हेन यू वांट समथिंग, All the universe conspires in helping you to achieve it. So on that note, let's start with our news magazine program, Aaj Savere, in which we'll share the latest national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 24th of August. So Alka, let's begin with the headlines first.
Bilkul. Ukraine ke Rashtrapati व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष समाप्त करने में वैश्विक राजनयिक प्रयासों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री जेलेंस्की ने ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा के बाद आया है। श्री जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वार्ता के दौरान श्री मोदी ने श्री जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों को बिना समय गंवाए एक साथ बैठकर संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही शांति का पक्षधर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत की मेजबानी में ग्लोबल साउथ देशों के दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के आयोजन का भी प्रस्ताव दिया। पहला यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों और वैश्विक संस्थानों ने भाग लिया था। भारत ने कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करता रहेगा। 9 घंटे की यूक्रेन की इस यात्रा से लगभग 6 सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी शिखर वार्ता की थी। प्रधानमंत्री ने देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री जेलेंस्की ने कहा कि भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है और यह महत्वपूर्ण है कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत यूक्रेन मित्रता को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से यूक्रेन की यात्रा की है। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई।
Defense Minister Rajnath Singh and US Secretary of Defense Lloyd Austin reviewed the existing defense cooperation activities and discussed ways to deepen it further during a bilateral meeting at Pentagon last night. They held wide-ranging discussions on bilateral defense cooperation, industrial collaboration, regional security, and other international issues. Mr. Singh reached Washington on Thursday on a 4-day visit to the United States. During the meeting with his U.S. counterpart, Mr. Singh highlighted the various co-development and co-production opportunities in India in the areas identified in the India-U.S. Defense Industrial Cooperation Roadmap, which was adopted last year. Both the ministers expressed happiness on the conclusion of the Security of Supplies Arrangement, SOSA, between India and U.S. In a statement, the Defense Ministry said, both the ministers appreciated the progress made in operationalizing the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness, a Quad initiative, and lauded the ongoing efforts by India to enhance the maritime domain awareness for the partners in the Indian Ocean region.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर कल रात रायपुर पहुंचे। वे आज नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह आज सुबह रायपुर जिले के चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। बाद में वे अंतर्राज्यीय समन्वय पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पर एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गया है। इस वर्ष अब तक राज्य में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 142 नक्सली मारे गए हैं। श्री अमित शाह कल रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ में सहकारी क्षेत्र के विस्तार पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे।
The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has asked food business operators, FBOs, and e-commerce FBOs to remove all claims regarding A1 and A2 types of milk and milk products from all packaging. FSSAI's instructions came after it found that several FBOs were selling milk and dairy products such as ghee, butter and curd under the A1 and A2 classification using FSSAI license numbers. The food regulator added that the A1 and A2 differentiation of milk is essentially linked to a difference in the structure of protein, and therefore any A2 claims on milk fat products are misleading and not in conformance with the provisions of the FSS Act 2006 and its regulations.
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और किसान स्तर पर कीटनाशकों की निगरानी और विनियमन के लिए अंतर मंत्रालयी समिति स्थापित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय सलाहकार समिति की 44वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमलावर्धन राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कृषि पद्धतियां सुरक्षित और टिकाऊ रहें। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ताओं को भोजन में कीटनाशक अवशेषों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से भी बचाएगा। श्री राव ने कहा कि राज्यों में ऐसे प्रमुख स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां मोबाइल लैब फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स तैनात किए जा सके। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल प्रयोगशालाएं उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार में सहयोग करेंगे।
In a major decision to facilitate voting by Kashmiri migrants in assembly elections in Jammu and Kashmir, Election Commission of India, ECI, has set up 24 special polling stations in Jammu, Udhampur and Delhi. Kashmiri migrant voters who are residing at various relief camps in Jammu, Udhampur can cast their votes at 24 polling stations, including 19 in Jammu, 1 in Udhampur and 4 in Delhi. The voting for assembly elections will be held in all 90 constituencies of Jammu and Kashmir in 3 phases on 18th and 25th of September and 1st of October.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कश्मीर डिवीजन के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगांव जिले और जम्मू संभाग में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कश्मीर संभाग में 16 और जम्मू में 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे।
Union Ministry of Health and Family Welfare has asked all the central government hospitals and medical institutes to design the new dress code for convocation ceremony. The ministry has written a letter to all the heads of the central government hospitals and medical teaching institutes in this regard. The ministry emphasized the importance of this change as a step towards breaking away from colonial legacies and embracing India's rich cultural tapestry. It said the various institutes use black robe and cap during convocation ceremony, and this tradition originated in the Middle Ages in Europe and has colonial legacy. The ministry directed the institutes to design appropriate Indian dress code for the convocation ceremony based on local traditions of the state in which the institute is located. And the bodies of 24 people belonging to Jalgaon district of Maharashtra who lost their lives in the Nepal bus accident will be brought back today. The bodies will be brought to Gorakhpur in Uttar Pradesh, and from there they will be transported to Nashik in an Indian Air Force aircraft, and then they will be handed over to their families. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde spoke to Union Home Minister Amit Shah and other senior officials about bringing the dead bodies back to Maharashtra. Mr. Shinde expressed grief about the deaths of these 24 people and extended condolences to the grieving families. He also contacted the relief and rehabilitation officers in the state and the center and took stock of the relief operation in Nepal.
जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 185 अंकों के साथ अपना पहला खिताब जीता। जापान 146 अंकों के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 79 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत की ओर से काजल स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पांचवी महिला पहलवान बनी। प्रतियोगिता में भारतीय महिलाओं ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुष पहलवान फ्री स्टाइल स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने में असफल रहे। भारत के साथ अब चैंपियनशिप में कुल 10 पदक हो गए हैं, जिसमें ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा के 2 कांस्य पदक शामिल हैं। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। तो पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं शेफाली
जी। अलका, विल स्टार्ट विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डीवर्मिंग टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स बिलो 19 ईयर्स ऑफ एज एज पार्ट ऑफ द नेशनल कैंपेन टू प्रिवेंट पैरासिटिक वर्म्स फ्रॉम अफेक्टिंग देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। द टैबलेट्स एल्बेंडाजोल वर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 lakh वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज। द प्रोग्राम इज कंडक्टेड वंस इन 6 मंथ्स। द सेकेंड राउंड ऑफ डीवर्मिंग विल बी कंडक्टेड टिल द 30th ऑफ दिस मंथ। द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर टी एस सेल्व विनयगम said that the whole tablet is powdered and dissolved in water for 2 to 5 years. According to the World Health Organization, nearly a quarter of the world's population is infected with intestinal worms. And in another news, Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, signed a memorandum of understanding with the Royal College of Surgeons of Edinburgh, United Kingdom. This agreement establishes the college as the first centre in India recognised by the Royal College of Surgeons to conduct the Faculty of Dental Surgery examinations in Chennai. And now, dear listeners, news from Bengaluru. Karnataka Medical Education Minister Dr. Sharan Prakash Patil chaired a meeting to review the preparedness for the monkeypox virus epidemic if it is reported in the state. Speaking to the media persons later, the minister said that there is nothing to panic at this stage. He said that the guidelines and advisories issued by the Union Health Ministry are being followed. The Victoria Hospital in Bengaluru has arranged the testing and screening of patients suspected of the viral infection. There are 50 isolation beds arranged for such patients and tests are conducted free of cost. Personal protective equipment, PPE kits, are in place to manage potential cases. The minister informed that India has not reported any monkeypox cases yet. However, the BMCRI-affiliated hospitals are kept on high alert with preparations made to handle any developments. And now, dear listeners, lastly, we have Hyderabad news. Telangana Governor Jishnu Dev Verma held discussions with senior officials from various departments that centered on development activities and the effective utilization of centrally sponsored schemes. Speaking on the occasion, the Governor Jishnu Dev Verma praised progress made by the departments. He had advised identifying and developing aspirational gram panchayats, which would serve as model gram panchayats, becoming self-sufficient in all aspects. And in another news, Telangana Governor Jishnu Dev Verma distributed dhoti, saris, t-shirts and blankets to all outsourcing employees, garden malis and sanitary workers at Raj Bhavan in Hyderabad yesterday. The distribution was made possible through the generous sponsorship of Bharat Sevashram Sangh. And now, listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, let's move over to Alka.
दिल्ली की महापौर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने दिल्ली नगर निगम के सचिव के चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने का कल निर्देश दिया। एक आधिकारिक नोटिस के द्वारा महापौर ओब्रॉय ने सूचित किया कि इस चुनाव द्वारा वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ वार्ड समिति से स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव होगा। चुनाव घोषित करने के लिए उन्होंने पिछले वर्ष 5 अगस्त को दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय नामक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। दिल्ली मेट्रो ने फेज 3 कॉरिडोर की मेट्रो सेवाओं के समय में परिवर्तन किया है। अब रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे के स्थान पर 6 और 7 बजे से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल, नया बस स्टैंड, नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह और बदरपुर बॉर्डर से राजा नाहर सिंह तक चलने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होंगी। मजलिस पार्क से शिव विहार, बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम और ढांसा बस स्टैंड से द्वारका तक चलने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे से आरंभ होंगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों और आवेदकों को भी लाभ होगा, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाएं रविवार को होती हैं। मेट्रो नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सेवाएं नियमित समय सुबह 6 बजे से चलती रहेंगी। राजधानी में कल दिन भर वर्षा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी रही। यातायात पुलिस ने बताया कि उन्हें यातायात समस्या की 15 और जलभराव की 12 शिकायतें मिली हैं। दिल्ली के धौलाकुआं, दिल्ली कैंट, ब्रिज रोड, सरदार पटेल मार्ग, जीटीके रोड, मोतीबाग चौक, रोहतक रोड, रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग सहित अनेक क्षेत्रों में लोगों को जलभराव की समस्या से परेशान होना पड़ा। इसी बीच राजधानी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में इस महीने की 16 तारीख से शिल्प दीदी महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में भारत देश के अलग अलग हिस्सों से आई शिल्प दीदियों के द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शिल्प दीदियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जाना तथा समझा। आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा करते हुए कोलकाता से आई हुई कथा कलाकार शिप्रा घोष ने बताया कि इस महोत्सव में लोगों को बंगाल की इस अद्भुत कला के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं बिहार से आई शिल्प दीदी सपना ने मधुबनी चित्रकारी की विशेषताओं के बारे में बताया। और शैफाली, अगर हम या आप अभी तक यहां नहीं गए हैं तो ये महोत्सव जो है वो 31 अगस्त तक चलेगा।
बिल्कुल, आई विल सेव द डेट।
बिल्कुल। और बात कर ले मुंबई की, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के 38वें क्षेत्रीय सम्मेलन में विकसित भारत @47 रोडमैप पर भाषण दिया, जिसमें भारत के आर्थिक विकास की भावी दिशा को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि आज भारत दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान पर है, जबकि विकसित देश मंदी और उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की पृष्ठभूमि में सरकार लाडली बहन योजना के साथ साथ सुरक्षित बहन योजना भी शुरू करेगी और उसे लागू करेगी। महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए श्री शिंदे ने दोहराया कि योजना आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त की समय सीमा के बाद जो महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करेंगी उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलेगी। और बात कर लें कोलकाता की, तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार संजय राय को कल कोलकाता की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। श्री निगम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के नए चिकित्सा अधीक्षक सह उप प्राचार्य तथा प्राचार्य ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने बताया कि चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख और सहायक अधीक्षक का तबादला भी कर दिया गया है। आज सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अलका और शैफाली के साथ, एक बार फिर स्वागत है। बात कर ले मौसम की, तो शैफाली दिल्ली का मौसम तो कल बहुत ही अच्छा रहा, और राजधानी की बात करें तो यहां बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बात करें मुंबई की, तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे, तेज वर्षा का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और जॉय सिटी कोलकाता की बात करें तो वहां बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
Yes, and now have a look at the weather of the southern cities. Chennai is expected to have rain with thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
बिल्कुल, और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 24 अगस्त है, तो सबसे पहले बात कर लें 1456 की, तो गुटेनबर्ग बाइबल की छपाई का कार्य आज ही के दिन पूरा हुआ था। और फिर 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना का भी आज दिवस है और जिसे अब आज हम कोलकाता के नाम से जान रहे हैं।
एंड गोइंग अ लिटिल बैक इन टाइम, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट शिप हेक्टर रीच्ड एट सूरत पोर्ट। Further on, in 1910, ITC Limited, a pioneering Indian conglomerate, acquired Kolkata's third largest tobacco company, marking a significant step in its industrial journey. In the year 1949, establishment of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, took place.
और 1969 की बात करें तो वाराहगिरी वेंकटगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, वहीं
And in the year 1971, crowds invaded the pitch as India beat England by 4 wickets for their first ever cricket victory in London.
बिल्कुल, 1974 की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने। 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। 1995 में उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत हुई। 1999 में पाकिस्तान ने करगिल ऑपरेशन के दौरान भारत द्वारा पकड़े गए 8 युद्धबंदियों को युद्धबंदी मानने से इनकार किया।
एंड इन द ईयर 2006 प्लूटो वाज रीक्लासिफाइड फ्रॉम अ प्लैनेट टू अ ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मार्किंग अ पिवोटल मोमेंट इन एस्ट्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।
और 2008 में आज ही के दिन बीजिंग ओलंपिक का समापन हुआ था। और अब बात करें उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे उस स्वतंत्रता सेनानी को जो मात्र 23 बरस की उम्र में देश की खातिर फांसी के फंदे पर चढ़ गया। और बात कर रहे हैं शिवराम हरि राजगुरु की। 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। ये सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया और देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने इनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा दिया। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव का बलिदान आज भी भारत के युवकों को प्रेरणा प्रदान करता है। राजगुरु को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे लाहौर के केंद्रीय कारागार में उनके दोस्तों भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था।
जी अलका, और राजगुरु बिकेम अ कलीग ऑफ भगत सिंह एंड सुखदेव थापर एंड टुक पार्ट इन द असैसिनेशन ऑफ अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी जॉन सॉन्डर्स एट लाहौर ऑन 17 दिसंबर 1928। द एक्शंस वर टू अवेंज द बीटिंग ऑफ लाला लाजपत राय बाय द पुलिस व्हाइल ऑन अ मार्च प्रोटेस्टिंग द साइमन कमीशन।
बिल्कुल, और राजगुरु के जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने उन पर संभवतः पहली बार कोई पुस्तक प्रकाशित की थी। इस सराहनीय प्रयास के लिए न केवल प्रकाशन विभाग धन्यवाद का पात्र है बल्कि उस लेखक को भी कोटि कोटि बधाई।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Pandit Basavraj Rajguru, a leading Indian classical vocalist in the Kirana Gharana. Basavraj was fond of music from a very young age. In 1936, at the 600th anniversary of the Vijayanagar Empire in Hampi, Basavraj gave his first concert with his guru Gavai. Basavraj's repertoire ranged from the pure classical khayal to vachanas, natyagit, thumri and ghazals spanning 8 languages.
बिल्कुल, और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर और कुमार गंधर्व के साथ पंडित बसवराज राजगुरु ने संगीतकारों की धारवाड़ त्रिमूर्ति का गठन किया था। उन्हें कर्नाटक विश्वविद्यालय से कई पुरस्कार और मानद डिग्री की उपाधि भी मिली और बसवराज राजगुरु को लगभग 40 रागों का व्यापक ज्ञान था और उनके प्रदर्शन की सूची में गजल, ठुमरी और ख्याल शामिल थे। ये आप बता चुके हैं कि किराना घराना के मशहूर संगीतकार थे। बचपन में नांदेड़ में लगातार 12 घंटे तक गायन कर अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध ही नहीं किया बल्कि इन्होंने आश्चर्यचकित भी कर दिया था। और सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और इसी वर्ष यानी 1991 में ये अनंत यात्रा पर निकल गए।
And dear listeners, today is the death anniversary of Louis Prima, an American trumpeter, singer, entertainer and band leader. While rooted in New Orleans jazz, swing music and jump blues, Prima touched on various genres through his career. From the 1940s through the 1960s, his music further encompassed early R&B and rock and roll, boogie-woogie and Italian folk music. So let's listen to his song, I Ain't Got Nobody by Louis Prima.
What will they say about me? When the end comes, I know there's just a triple dose. Life goes on without me, 'cause
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me.
और शेफाली आज हम याद कर रहे हैं अंजलि देवी को जी। इनकी भी आज जयंती है। 24 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 8 साल की उम्र में एक नृत्य नाटक कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और 9 साल की उम्र में इन्होंने तेलुगु फिल्म हरिश्चंद्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्म की शुरूआत की। और अंजलि देवी एक अनुभवी तेलुगु और तमिल अभिनेत्री और निर्माता थी और लव कुश में सीता के रूप में अपनी पौराणिक भूमिका और सुवर्ण सुंदरी और अनारकली जैसे फिल्मों में भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है और हिंदी सिनेमा में उन्हें जैमिनी गणेशन के साथ देवता और महिपाल तथा भक्त प्रहलाद के साथ सती सावित्री में उनकी भूमिकाओं के लिए भी याद किया जाता है और सती सावित्री में उन पर फिल्माए गए गीत जैसे तुम गगन के चंद्रमा हो, जीवन डोर तुम ही संग बांधे, कभी तो मिलोगे आज भी लोकप्रिय है। इन्होंने 350 से अधिक तेलुगु फिल्मों, कुछ तमिल और कन्नड़ फिल्मों में नायिका के रूप में अभिनय किया और निर्माता के रूप में इन्होंने 27 फिल्मों का निर्माण किया और 13 जनवरी 2014 को इन्होंने अंतिम सांस ली।
जी अलका, और हम एक और आर्टिस्ट की बात करते हैं जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। शी वॉज संजुक्ता पणिग्रही, अ डांसर फ्रॉम इंडिया हु वॉज द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस ओडिसी एंड इंश्योर्ड इट्स ग्रैंड रिवाइवल। शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री and is also the recipient of the Sangeet Natak Academy Award. Sanjukta's forte was her nrita, or pure dance, in which she was outstanding. In Abhinaya, critics were agreed on the fact that she often veered towards jatra and melodrama. She left behind a rich repertoire of Odissi dance, both modern as well as classical. What you are listening to in the background is a musical track from one of her Odissi dance performances, Ardhanarishvara Stuti.
आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार वेंकटरामा रामालिंगम पिल्लई को, जो तमिलनाडु से थे और सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और वेंकटरामा रामालिंगम पिल्लई, जिन्हें नमक्कल कविगनार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 19 अक्टूबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था और शुरुआत में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक लिपिक के रूप में काम किया और सैकड़ों कविताएं रची देशभक्ति की।
And as mentioned in the beginning of the program, today is the birthday of Paulo Coelho, a Brazilian lyricist and novelist and a member of the Brazilian Academy of Letters. He is known for his popular book, the 1988 novel, The Alchemist, which was an international bestseller.
और शेफाली हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह को।
जी
यो ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है।
और इनकी विशेषता जो है वो लोग जानते ही हैं, लेकिन भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय कल्याण जी को ही जाता है।
बिल्कुल।
और इनके कई फिल्में थी छलिया उपकार हिमालय की गोद में आदि। तो घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और शैफाली सिंह को अनुमति दीजिए।
स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो।